ॐ नमो भगवते वासुदेवाय तुजाय मुदीरे नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः ओम अज्ञानतिमिरांधस्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं नमो ब्राह्मण देवाय ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः हे कृष्णा करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत ಶಿವಾದ್ವೈತ ಗದಾಧರ
ಶಿವಾಸಾದಿ
ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ
ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಹರೇ
ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಹರೇ
ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ
ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ
ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ
ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಆಪ್ ಸಭಿ ಭಕ್ತಗಣ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಕರ್ತೇ आज बहुत ही शुभ दिन है। आज जैसा कि हमने पहले बताया आज श्री जगन्नाथ रथ यात्रा है। पूरी धाम जो है उसमें जगन्नाथ जी की बहुत बड़ी रथ यात्रा निकलती है और ये उत्सव इतना बड़ा होता है कि जब अंग्रेज हमारे पे जब शासन कर रहे थे तो वो लोग चकित रह गए देख के कि कैसा ये उत्सव है कि एक दिन पहले कोई नहीं है जगन्नाथपुरी में, एक दिन के बाद कोई नहीं है, लेकिन रथ यात्रा वाले दिन लाखों लोग है, 10 लाख लोग आते उधर रथ को खींचने के लिए। तो ये बहुत ही अद्भुत उत्सव है, ऐसा उत्सव कहीं देखने नहीं मिलता है। तो आज हम जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा मैया की कृपा से कुछ जगन्नाथ जी के बारे में कथा करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उमेश प्रभु को जो इतना अच्छा तरह से ये कार्यक्रम मैनेज कर रहे हैं और आप सब लोग आके सब हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं। और दूसरे स्वयंस्फूर्ति प्रभु ने भी मुझे कहा था यहाँ आने के लिए, तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज हमारे साथ आबू धाबी से जय केशव प्रभु, अमित प्रभु और सुरेशचार्य प्रभु और राघवेंद्र प्रभु भी आए हैं। राघवेंद्र प्रभु एक्चुअली हमारे बैकबोन है पूरा, जब भी कभी कुछ होता है चाहे कोई भी इधर प्रचार करने के लिए आएगा लेकिन राघवेंद्र प्रभु जरूर उनके साथ आएंगे, तो बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं वो। हालांकि भले ही वो खुद बहुत ज़्यादा कुछ बोलते ना हो लेकिन बताते हैं कि सेवा बोलने से ज़्यादा उत्तम है। अभी जैसे हमने कीर्तन किया लास्ट टाइम, लोकनाथ स्वामी महाराज आए थे दुबई में तो उन्होंने बताया कि आप लोग इतना अच्छा कीर्तन कर ही रहे हो तो फिर कथा करने की क्या जरूरत है। कथा करने का कारण क्या है, कथा करने का उद्देश्य है कि कथा करने के बाद हम लोग अच्छा कीर्तन करें। भगवान का जो नाम है बस वही लेना, कलियुग केवल नाम आधारा। बोलते हैं कि कलियुग के अंदर केवल भगवान का नाम, केवल भगवान का नाम, केवल भगवान का नाम ही हमारी रक्षा कर सकता है, दूसरा और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। तो हम लोग इतना जो भी प्रचार करते हैं, जितना भी कुछ भी प्रोग्राम अरेंज करते हैं, जो भी करते हैं, उसका सिर्फ एक उद्देश्य है, क्या? हरि नाम का जप करना, बस भगवान का नाम लेना। बाकी इतना बड़ा बड़ा फिलोसॉफी और जितना कुछ भी बोलते हैं वो सब सिर्फ एक ही चीज़ के लिए। प्रभुपाद जी ने एक बार कहा था कि हमारा जो ये मूवमेंट है इसमें हम खाली 3 चीज करते हैं बस, चैंटिंग, डांसिंग एंड फिस्टिंग। उन्होंने ये कहा था प्रभुपाद जी ने, बड़े कि हम क्या करते हैं कि हम जप करते हैं, हम भगवान के प्रसन्नता के लिए नृत्य करते हैं और हम भगवान को चढ़ाया हुआ जो भोग है, जो प्रसाद बनता है वो प्रसाद खाते हैं बस। तो हमारा ये 3 ही काम है, भगवान के लिए जप करना, भगवान के लिए नृत्य करना और भगवान का प्रसाद खाना। और बीच में अगर कोई ये चीज समझ में नहीं आती है किसी को तो उसको समझाने के लिए थोड़ी बहुत फिलोसॉफी बोलते हैं, बस यही पर्पस है। फिलोसॉफी का और कोई पर्पस नहीं है, नहीं तो ऐसा नहीं है कि फिलोसॉफी पढ़ के हम भगवान के पास चले जाएंगे। नहीं, भगवान ने कहा कि भगवान का नाम लोगे अंत काले च मामे व स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। भगवान ने कहा कि अगर आप मेरे को स्मृति करोगे तो ही आप मेरे पास आ सकते हो, बाकी अन्य कोई रास्ता नहीं आने के लिए। तो इसलिए हम बार बार, लास्ट टाइम भी जब मैं इधर आया था मैं यही चीज कह रहा था बार बार कि कई बार कई लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं तो बहुत किताबें पढ़ते हैं, बहुत अच्छे अच्छे श्लोक याद कर लेते हैं, ऐसा होते हैं, पर हमको डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है। हमारे को क्या है, सिंपल सा 16 अक्षर का ये मंत्र है जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमको दिया है और आदेश दिया है कि बस इसका जप करो, और कुछ भी नहीं चाहिए। चैतन्य महाप्रभु सिर्फ एक ही चीज हमारे से मांगते हैं कि इस महामंत्र का जप करो,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो ये भी सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हम लोग जो है वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है या ज्यादा हमको बोलना नहीं आता है या ज्यादा कुछ और कर नहीं सकते हैं। और आप सब लोग जो है जो इस प्रकार जो भक्ति कर रहे हो वो कभी कभी हमको मेरे को लगता है कि हमारी भक्ति से तो बहुत ज्यादा बड़ी है वो। हालांकि हम आगे यहाँ पे लेक्चर दे रहे हैं लेकिन क्योंकि इतना घंटा काम करने के बाद, इतना कुछ करने के बाद भी आप भगवान की सेवा कर पा रहे हो, तो ये भगवान की कृपा है। एक बार हमारे एक मित्र है, वो लेक्चर में बोल रहे थे कि भक्ति सरल नहीं है, भक्ति करने के लिए बहुत पुण्य होना चाहिए तो ही भक्ति कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते। तो लेक्चर खत्म होने के बाद एक लड़के ने प्रश्न किया, कॉलेज का लड़का था, वो बोला कि प्रभु जी मेरे को कैसे पता चलेगा कि मेरे पास पुण्य है कि नहीं। तो उन्होंने बोला कि दो घंटा इधर बैठ के लेक्चर सुना वो कम है क्या? वही पुण्य है, अगर वो पुण्य नहीं होता तो लेक्चर में नहीं आता। तो अगर ना हम लोग के पास अगर पुण्य नहीं होता, इस रूप में जो भी बैठे हैं, तो यहाँ पे नहीं आते, है ना। और आज जो पहली बार आए हैं बड़े ही भाग्यवान है, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि आज जगन्नाथ जी का उत्सव है, और भगवान मतलब ऐसा लगता है कि भगवान को देखने के लिए ना बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ती है, भगवान इतनी आसानी से नहीं मिलते, लेकिन भगवान इतने कृपालु है कि खुद मंदिर में से बाहर आते हैं, बोलते नहीं देखोगे तो भगवान आपके सामने आएंगे दिखाने के लिए कि देखो मैं आ गया। जगन्नाथ जी इतने कृपावान, आप सोचो कि जगन्नाथ जी के जितनी कृपा संसार में और कोई नहीं कर सकता, कि अपना मंदिर छोड़ के, अपना घर छोड़ के इधर आते क्या शेख खलीफा मुस्तफा के अंदर, बोलेगा चलो तुम लोग मेरे को आ नहीं सकते महल में देखने के लिए, तो मैं शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान आ गया आपके पास आपको अपना दर्शन देने के लिए। नहीं होता ऐसा इस संसार में, ऐसा नहीं होता। लेकिन भगवान हमको समझना चाहिए कि जगन्नाथ जी खुद मंदिर में से उठ के बाहर आ रहे हैं, रथ के ऊपर रोड पे घूम रहे हैं, काय के लिए? हमको दर्शन देने के लिए। क्या हो चलो बेटा लोग हमारा दर्शन करो, लो क्यों? और उनके दर्शन करने से ही हमारा सारे पाप धुल जाएंगे। अब थोड़े थोड़े आगे आ सकते हो, तो पीछे आने वाले लोग बैठ सकते हैं। तो भगवान खुद आते हैं, क्यों? क्योंकि भगवान को ऐसा बताते हैं कि एक बार जो जगन्नाथ जी का दर्शन कर लेता है, एक बार जो उनके रथ की रथ से खींच लेता है, वो इस संसार में वापस जन्म नहीं लेता, वो सीधे भगवान के धाम में जाता है। इतना इंपॉर्टेंट है। आप लोग में से कोई लोग गए कि अभी तक जगन्नाथपुरी गए? प्रभु जी गए और हम भी गए एक दो बार। तो कभी मतलब ऐसा है कि भगवान से प्रार्थना करेंगे कि चांस मिलेगा तो एक बार जगन्नाथपुरी घूम के आएंगे, क्योंकि भगवान का चार धाम में से एक धाम भी है, दूसरे धाम में भी हम जाएंगे। जहां जहां भी ऐसा कहते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि गौर आमार जे सब स्थाने करी लो भ्रमण रंगे, से सब स्थाने हेरिबो आमी प्रणय भक्त संगे। कि चैतन्य महाप्रभु गौर आमार, हमार गौर सुंदर, जहां जहां पर भी गए हैं वहां वहां पर हम जाने की कोशिश करेंगे सब भक्तों के साथ में। तो दिल में ऐसी एक यू नो भावना रखनी चाहिए कि चलो कभी ना कभी हम भगवान के पास जाएंगे। हालांकि बहुत डिफिकल्ट है, जब तक भगवान की मर्जी नहीं होती कोई भगवान के पास नहीं जा सकता। प्रभुपाद जी बोले थे कि कोई भी टिकट खरीद के वृंदावन नहीं जा सकता, है ना। वृंदावन जाना मतलब टिकट ले लिया मथुरा चले गए, उतर के चले गए रिक्शा में बैठ के, वृंदावन नहीं। वृंदावन जो है वो बहुत ना बहुत ऊंचा स्थान है। कई बार हम लोग घूमते घूमते, और भगवान खुद कहते हैं कि एक बार नारद जी ने पूछा कि भगवान आप कहाँ पे रहते हो, ढूंढ रहे थे उनको, तो उन्होंने कहा कि मैं योगी लोग के हृदय में भी नहीं रहता हूँ, है ना, मैं बड़े बड़े पंडितों के और उधर उधर भी नहीं रहता हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, जहाँ पर मेरे भक्तगण मेरा भजन कीर्तन और मेरे बारे में कथा करते हैं मैं वहाँ पर रहता हूँ। तो उस तरह हमको ये सोचना चाहिए कि आज स्वयं जगन्नाथ जी इधर है हमारे पास, भगवान कृष्ण प्रेजेंट है। तो बहुत ही यू नो शुभ दिन है आज, और शुभ दिन पे अगर कुछ जो हम कार्य करते हैं तो उसका जो बेनिफिट होता है बहुत ज़्यादा है। अब जैसे अगर समझो कोई लोग जप कर रहे हैं तो करना चाहिए, थोड़ा और ज़्यादा करना चाहिए आज जप, उसका बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। और जो जप नहीं करता उसको जप चालू करना चाहिए आज से, कि चलो आज से हम जप करते हैं, कहने के लिए ना, क्योंकि अभी हमारी इतना क्या बोलते हैं पवित्रता नहीं है, इतना प्योरिटी नहीं है कि मतलब बोलूंगा तो सबकी समझ में आ जाएगा। बट हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ नॉलेज नहीं है, जो भी प्रभुपाद जी ने कहा है और जो गुरुजनों ने कहा है और जो वैष्णव ने कहा है उनसे जो सीखा है वही हम दोहरा रहे हैं बस। मगर ऐसा है कि यही चीज़ अगर यू नो एक व्यक्ति जिसके पास बहुत पवित्रता है अगर वो बोलता है तो उसका असर होता है। पर हमें ये जानना चाहिए कि जो भी हम कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, सत्य कह रहे हैं। तो इसलिए भगवान का नाम जो है यू नो केवल वही हमको बचा सकता है, दूसरा अन्य कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। ये चीज़ हमको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ का हमको ज्ञान नहीं रहेगा उस चीज़ का हम आदर नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हमारे बीच में एक और कोई वर्कर ना मुस्तफा से आके बैठ जाता है तो कोई उसको ध्यान नहीं देता, और वही समझो अगर शेख खलीफा आके बैठ जावे, समझो प्रवचन के अंदर हम ऐसी प्रार्थना करते भगवान से कि कभी ऐसा भी होगा आगे चल के, इन्हों शेख लोग भी आके हमारे प्रवचन में कभी बैठेंगे, प्रभुपाद जी की कृपा मिलेगी उनको भी। पर ऐसा कहता हूँ कि अगर आके बैठे तो कितना लोग उसको देखने लगेंगे, हाँ सब बाकी काम छोड़ के उसके आगे पीछे भागेंगे। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं, वो थोड़ा ज्ञान है कि हाँ ये व्यक्ति राजा है यहाँ का। तो जब तक हमारे को ज्ञान नहीं रहेगा, जब तक पता नहीं चलेगा कि जगन्नाथ जी कौन है, तो कोई लोग ऐसा सोच सकता है कि लकड़ी का टुकड़ा है बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मतलब कई लोगों को ऐसा है कि जो जो जगन्नाथ जी की महिमा नहीं जानते हैं, जगन्नाथपुरी नहीं गए, उनको पता ही नहीं है कि जगन्नाथ जी क्या है, क्योंकि इनका जो आकार है वह भी बड़ा आश्चर्यजनक आकार है, ऐसा आकार कहीं देखने नहीं मिलता है। तो हम ये आज चर्चा करेंगे कि भगवान का ये जो आकार है ये कैसे आया, ये आकार क्यों है ऐसा। तो बताते हैं कि जगन्नाथ का जो मतलब है वो होता है कि जगत का नाथ, ये जो पूरा संसार है उसका जो स्वामी है उसका नाम है जगन्नाथ। तो पूरे संसार का स्वामी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो जगन्नाथ जी कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है, ये भिन्न नहीं है उनसे। और उनके साथ उनकी बहन सुभद्रा देवी और उनके बड़े भाई बलदेव जी वो विराजमान होते हैं रथ पे। तो जगन्नाथ पुरी जो धाम है ये उड़ीसा में है, उड़ीसा के पास भुवनेश्वर से और थोड़ा कुछ किलोमीटर आगे। इस जगन्नाथ पुरी धाम को श्री क्षेत्र कहते हैं, या इसको पुरुषोत्तम क्षेत्र भी कहते हैं, या इसको नीलाचल धाम भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है एक पर्वत पे बसा हुआ है और वो पर्वत नीले कलर का है। और पुरुषोत्तम भगवान का एक नाम है कि जो सभी में उत्तम है। बताते हैं कि ये जो जगन्नाथपुरी है, हमारे भारत में चार धाम है, मतलब जिसको यू नो ट्रेडिशनली लोग जाते हैं कि चलो चार धाम की यात्रा करनी चाहिए। आप लोगों को मालूम है चार धाम कौन कौन से बताइए? रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, द्वारका, बद्रीनाथ। ये चार हमारे धाम माने जाते हैं। सो ये धाम अलग अलग भगवान के यू नो एक्टिविटी कार्यकलापों का वर्णन करते हैं। जगन्नाथपुरी जो है वो भगवान का यू नो खाने का स्थान है, भगवान के खाने का स्थान है। यहाँ पे भगवान बस खाना पसंद करते हैं। तो इसके लिए आप देखेंगे कि जगन्नाथपुरी में 56 तरह के जो ना भोग होते हैं वो लगते हैं, और दिन में 8 बार वो भोग चढ़ते हैं, और पूरी बार बस जगन्नाथ जी खाते रहते हैं ना। लोग ऐसा कुछ लोग बोलते हैं आके कि ये कैसे भगवान, इनके तो हाथ ही नहीं है। अरे हाथ नहीं है फिर भी 56 बार खाते हैं, हमारे हाथों के हम लोग 56 आइटम नहीं खा सकते। तो ऐसा है कि भगवान बस वो खाते रहते हैं। वैसे जो है बद्रीनाथ जो है वो भगवान की पूजा करने का स्थान है, द्वारका जो है वो भगवान के सोने का स्थान है, आराम करने का स्थान है, रामेश्वरम जो है वो भगवान के नहाने का स्थान है, और जो जगन्नाथपुरी है वो भगवान के खाने का स्थान है। तो इसलिए जगन्नाथ जी को बहुत अच्छा लगता है कि कोई भी मतलब भगवान को अगर वहाँ पे कोई चीज़ अर्पित करता है, और बड़ा बड़ा भोग खाते हैं भगवान। और आप देखेंगे कि जगन्नाथपुरी में भगवान का जो मंदिर है उसके पीछे एक बाजार है जिसका नाम है आनंद बाजार। तो जो भी भगवान को वहाँ भोग लगता है वो वहाँ पर यू नो बेचा जाता है, और उसकी मतलब महानता इतनी है कि समझो आप एक कुल्हड़ ले लो, एक कुल्हड़ में दाल और चावल लो, उसमें 10 आदमी खाओ 20 आदमी खाओ, कुल्हड़ खत्म नहीं होता है। अगर यू नो मेरी बात का विश्वास हो तो कभी जाके ऐसा ट्राई करके देखना, हमने भी देखा था, खत्म ही नहीं होता है। मतलब बस उस कुल्हड़ को खाली नहीं करना चाहिए, तो इतना मतलब महत्व है उसका। और जगन्नाथ जी का जो रसोड़ा है उसमें हजारों लोग काम करते हैं, रोज सुबह से लेकर शाम तक बस खाना ही बनता रहता है, इतना अच्छा जगह है। जगन्नाथ जी का जो मंदिर है अगर आप देखोगे तो उसका साइज बहुत बड़ा है, मतलब एकदम ऐसा कोई 10-12 माले का जो बिल्डिंग होता है उतना बड़ा मंदिर है। और उतना ही बताते हैं कि नीचे यू नो जब उसका फाउंडेशन बनाया था तब बनाया था, और उस मंदिर के ऊपर एक बहुत बड़ी ध्वजा, मतलब झंडा जिसको बोलते हैं, वो ध्वजा है, और उसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा नीले कलर का चक्र है। तो बताते हैं कि जो चक्र है सुदर्शन चक्र, ये भगवान का स्वयं चक्र है। सो चक्र के दर्शन कर लेना मात्र ही जगन्नाथ जी के दर्शन करने के जैसा है, कि मतलब अगर कोई जाके सिर्फ चक्र का भी दर्शन करता है तो ये समझा जाता है कि उसने जगन्नाथ जी के दर्शन किए। तो कई बार पता नहीं ये कहाँ से शुरू हुआ, लेकिन ऐसी प्रथा है कि केवल हिंदू लोगों को उस मंदिर में जाने के लिए अलाउड करते हैं, बाकी लोगों को अलाउड नहीं करते हैं। सो बाकी लोग अगर उसका चक्र का भी दर्शन करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि उन्होंने भगवान जगन्नाथ का दर्शन किया। हरिदास ठाकुर जो थे वो मुस्लिम परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन 300,000 हरिनाम का जप करते थे रोज, 192 राउंड्स, 192 माला करते थे वो, हमको 16 माला करके चक्कर आ जाता कई बार, कोई 17 माला करने बोलता तो आंखों में पानी आ जाता है कि नहीं होता अभी ना, 2-4 माला करना भी बहुत भारी पड़ता है। लेकिन 192, और ये कोई कोई दंत कथा नहीं है, ये हकीकत है, 192 राउंड करते थे वो। लेकिन क्योंकि मुस्लिम परिवार से थे, वो जगन्नाथ पुरी के मंदिर में जाते नहीं थे, तो केवल जगन्नाथ जी का चक्र का दर्शन करते थे रोज और उनकी आराधना करते थे। तो जगन्नाथ जी स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में बाहर आते थे मंदिर से, और बाहर आके वो जगन्नाथ हरिदास ठाकुर के पास जाते थे, उनसे मिलते थे और उनका अपना महाप्रसाद देते थे। बोलो, मतलब कई बार ऐसा है कि हम मंदिर में जाते हैं तो भी भगवान के दर्शन नहीं हो सकते, कई बार भगवान बाहर आते हैं भक्तों को दर्शन देने के लिए, तो इतने महान है भगवान। तो ये चक्र जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चक्र का दर्शन करना। और जगन्नाथ जो मंदिर है उसमें 4 बहुत बड़े बड़े द्वार है, गेट, बहुत बड़े बड़े गेट है, और चारों गेट का नाम है, एक गेट का नाम है सिंह द्वार, मतलब शेर का जो आकार बना हुआ है, दूसरा है अश्व द्वार, अश्व द्वार मतलब घोड़ा है ना, जिस पर घोड़े है। फिर है व्याघ्र द्वार मतलब जो टाइगर होता है, चीता वो है। और दूसरा है हस्ती द्वार, हस्ते मतलब हाथी, तो हाथी द्वार। तो ये 4 द्वार है। तो जनरली चैतन्य महाप्रभु सिंह द्वार से हमेशा जगन्नाथपुरी के मंदिर में जाया करते थे। और जगन्नाथपुरी के मंदिर के अंदर अगर देखेंगे तो जो जगन्नाथ जी के जो अर्च विग्रह है, ये बहुत ही बड़े हैं, मतलब आप हमारे जो साइज है उससे भी बड़े हैं, मतलब इतने बड़े लकड़ी के ये मूर्ति है कि इसको जब रथ पे जब लाया जाता है तो हजारों की संख्या में लोग उसको धक्का मारते हैं, फिर भी कई बार वो हिलते नहीं है, मतलब इतने बड़े बड़े है ना, इतने मूर्ति आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितना बड़ा आकार होगा, कि हमको उनके सामने जाके और कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसा लगता पूरा विश्व इधर ही है, इतने बड़े हैं मतलब। सो उसमें वहाँ पर उनके सामने गरुड़ स्तंभ है जहाँ पर गरुड़ जी विराजमान है, ऐसा बताता है कि जनरली जहाँ पे भी विष्णु तत्व होते हैं श्री कृष्णा, उनके जो सेवक है हनुमान जी और गरुड़ जी हमेशा वहाँ पे रहते हैं, तो गरुड़ स्तंभ है। उस गरुड़ स्तंभ के पास से खड़ा रहकर चैतन्य महाप्रभु हमेशा जगन्नाथ जी का दर्शन किया करते हैं। और ऐसा बताता है कि जब पहली बार चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ जी के जब दर्शन किए तो वो भाव विभोर हो गए और तुरंत गिर पड़े और बेहोश हो गए। कई बार हमको है कि हम लोग भगवान का अर्च विग्रह की दर्शन करते हैं लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता हमारे को, है ना, जैसे थे वैसे ही रहते हैं, कुछ चेंजेस नहीं होते हैं, तो प्रॉब्लम अर्च विग्रह में नहीं, प्रॉब्लम हमारे में है ना। कई बार ऐसा है कि कई लोगों को भगवान देखने मात्र से रोना आ जाता है। जैसे हम एक बार जगन्नाथपुरी में जब गए थे 1999 में, सो बहुत नए नए थे अब हम तभी, सो रथ के पास खड़े थे, ऐसे ही देख रहे थे जगन्नाथ जी को, तो एक बहुत बुढ़िया औरत, मतलब कम से कम 80-90 बरस की होगी, वो जोर से आई पीछे से दौड़ते, हरी बोला, और गिर पड़ी और रोने लगी। तो मैं थोड़ा डर गया, मैंने कहा क्या हुआ भाई, कहीं बेहोश होश तो नहीं होगी ना माता जी। तो इस तरह से मतलब इतना स्पॉन्टेनियस था। प्रभुपाद जी हमें कहते हैं कि हमको पब्लिक के अंदर आंसू नहीं बहाना चाहिए, पर कई बार जो सच्चा प्रेम होता है ना वो झलक के बाहर आ जाता है। तो गरुड़ स्तंभ से चैतन्य महाप्रभु हमेशा देखा करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि बहुत दिनों के बाद जब मंदिर खुला तो सब लोग दौड़े मंदिर के अंदर भगवान के दर्शन करने के लिए, और दौड़ के जैसे ही सब लोग अंदर मंदिर के अंदर गए, बहुत भीड़ भगड़ा वो सब हो गया। तो कई बार क्या होता है कि जो छोटे हाइट में होते हैं हमारे जैसे, उनको देखने मिलता नहीं है दर्शन ना, कोई बड़े बड़े जो हाइट होते हैं प्रभु जी के जैसे, वो लोग दर्शन कर पाते हैं, हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु खड़े थे गरुड़ स्तंभ के पास, तो एक बूढ़ी औरत थी ना जिसकी हाइट कम थी, वो दौड़ के आई दर्शन करने के लिए, पर दर्शन नहीं कर पा रही थी। तो उसने क्या किया, आओ देखा ना था, वो सीधा चढ़ गई चैतन्य महाप्रभु जो भगवान है उनके कंधे के ऊपर पैर रख दिया, और उनके कंधे पर पैर रख के गरुड़ स्तंभ को पकड़ के चढ़ गई ऊपर, और वहां से देखने लगी भगवान को, और देख के एकदम आश्चर्यचकित हो गई। तो गोविंद जो थे वो चैतन्य महाप्रभु के सेक्रेटरी थे, पर्सनल सर्वेंट थे, तो पर्सनल सर्वेंट गोविंद बहुत चिड़े उन पे, और उस बुढ़िया को कहा ये क्या कर रही हो तुम, तुमको पता नहीं चैतन्य महाप्रभु एक सन्यासी है और औरत हो के तुम सन्यासी के ऊपर चढ़ गई, उनके कंधे पे पैर रख दिया, कितना बड़ा अपराध किया, ऐसा करके झाड़ के उनको बड़ा नीचे उतार दिया। तो चैतन्य महाप्रभु तुरंत गोविंद को रोका, बोला हे गोविंद ऐसा मत कहो। वो बोलते हैं कि इस बुढ़िया को जितनी आतुरता है भगवान को देखने के लिए, उसका एक छोटा सा कण भी अगर मेरे को मिले तो मेरा जीवन सफल हो जाए। अब सोचो भगवान चैतन्य महाप्रभु ऐसा कह रहे हैं कि इस बुढ़िया में जो आतुरता है वो आतुरता मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन सफल हो। तो सोचो हमारी क्या परिस्थिति है, हम लोग बहुत दूर है। तो कई बार कई लोग होते हैं जो बोलते हैं कल है ना कृष्णा मेरे सपने में आया था तो राधा मेरे सपने में आई थी। कई लोग ऐसे हैं, आप मिलेंगे, आप कभी जाओ कलकत्ता के अंदर یا جگنناتھ پوری میں کہیں بھی چلے جاؤ, مطلب یہاں پہ لوگ بولیں گے کہ نا بھگوان میرے سپنے میں آئے تھے, معلوم ہے؟ تو ایسے سمجھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے بھائی, ان کو پرنام کرنا چاہیے, پر ایسا اتنا آسان نہیں ہے. بھگوان کے لیے سچی بھکتی ہونی چاہیے, سچا بھکتی سچا پیار اگر نہیں ہے من میں تو بھگوان کے درشن کر پانا اتنا آسان نہیں ہے. اور پربھوپاد جی بتاتے کہ بھگوان کا درشن کرنا آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے. مشکل اس کے لیے کہ جس کا دماغ خراب ہے, جو بہت کمپلیکیٹڈ ہے, جس کو جو اپنے آپ کو بہت تیس مار کھا سمجھتا ہے. بھگوان کیول ایک چیز سے پرسن ہوتے ہیں اور وہ ہے نمرتا. اگر نمرتا ہم نے ڈیولپ کی, جس کو ہیوملٹی بولتے ہیں انگلش میں, اگر نمرتا ہمارے پاس ہے تو ہی بھگوان ہم بھگوان کا ساکشاتکار کر پائیں گے. اور پربھوپاد جی کے جو گرو ہے بھکتی سدھانت سرسوتی ٹھاکر, انہوں نے کہا کہ بھگوان کرشن کو دیکھنے کی کوشش مت کرو, ان کی سیوا کرنے کی کوشش کرو, اور سیوا بھی اس طرح کرو کہ وہ تم کو دیکھنے کے لیے ویاکل ہو جائے, ہے نا؟ کہ جیسے ہری داس ٹھاکر بھگوان کی سیوا کرتے تھے تو چیتنیہ مہاپربھو سوئم ان کے پاس چلے جاتے تھے. تو ویسی آترتا سے اگر ہم لوگ سیوا کریں گے تو بھگوان ہمارے پاس آئیں گے, نہیں تو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ دلی بہت دور ہے, ابھی اتنا جلدی ہم کو ملنے والا نہیں ہے. اور بتاتے کہ یہ جو جگن ناتھ پوری ہے, یہ جو پریزنٹ مندر جو ہے, وہ کم سے کم 2000 ورس پہلے کنسٹرکٹ کیا ہے, لیکن اس کے پہلے بھی کروڑوں ورس پہلے, مطلب جب ستیوگ تھا تب جگن ناتھ جی کا مندر تب سے استھاپت ہے, ہم کتھا میں پڑھیں گے. سو آج بھی جگن ناتھ پوری کے مندر میں درشن کرنے کے لیے دیوتا لوگ بھی آتے ہیں. ایک بار ہم نے ایک ایسا انسیڈنٹ سنا تھا کہ ایک جگن ناتھ جی کا جو پجاری تھا اس نے وبھیشن کو دیکھا تھا, راون کا جو بھائی ہے, وبھیشن وہاں پہ درشن کرنے کے لیے آئے تھے اور انہوں نے اس کو ایک انگوٹھی دی تھی, تو ایسی بھی ہم نے اسٹوری سنی تھی. سو ایسا بتاتے ہیں کہ جو بھگوان کرشن ہے وہ شیو جی سے کہتے ہیں, ایسا ورنن چیتنیہ چریتامرت میں آتا ہے, وہ کہتے ہیں سندھو تیرے وٹ مولے نیلا چل نام کھیتر سی پروشتم اتی رمیہ استھان. وہ کہتے ہیں کہ سندھو تیرے, مطلب جو جگن ناتھ پوری ہے وہ ایک سمندر کے کنارے بسا ہوا ہے, سندھو تیرے وٹ مولے, اور وہاں پر نا ایک برگد کا پیڑ ہے, اس کے پاس بتاتے ہیں بھگوان کے نیلا چل نام, اور اس جگہ کا نام ہے نیلا چل. تو اس جگہ پہ بھگوان بولتے ہیں کہ وہ شری کھیتر پروشوتم کھیتر ہے, وہی جگن ناتھ پوری میرا نتیہ دھام ہے, اور وہ رمیہ استھان, وہ بہت ہی سندر ہے. تو جگن ناتھ پوری جو ہے وہ بہت ہی سندر ہے. سرو کال سے استھانے امر وسدی پرتی دن امر بھوجن ہے تاتھی. وہ بولے کہ یہ جو استھان ہے میرا, اس پہ ہی میں بیٹھتا ہوں, وراج ہوتا ہوں روز, اور میں وہاں بیٹھ کے کیا کرتا ہوں, بھوجن کرتا ہوں, میں کھاتا ہوں. اور بولتے ہیں کہ جگن ناتھ پوری کی مہیما دیکھیے, بھگوان آگے کہتے ہیں کہ نیدرا تے ہو یہ استھان سمادھی فل ہے سین پرنام فل یتھا وید کائے. بولے کہ جگن ناتھ پوری کے اندر اگر آپ سو گئے تو وہ بھی سمادھی کی طرح ہے. ایک بار خالی جگن ناتھ پوری میں سو گئے, ایک رات بتا دی تو آپ نے سمادھی پا لی, ایسا ہے. اور آپ نے اگر سوتے سوتے سوئے ہیں تو بھگوان وہ سمجھتے کہ وہ انہوں نے پرنام کیا ہے, ایسا ویدوں میں لکھا ہے کہ جگن ناتھ پوری کے اندر اگر آپ سو بھی گئے, گر گئے تو بھگوان سمجھتے ہیں کہ یہ بچے نے میرے کو ڈنڈوت کیا ہے, دیکھو اتنا مطلب کرپا ہے. تو جگن ناتھ پوری جو ہے اس کے آس پاس اور بھی کئی اچھے اچھے جگہ ہے جو دیکھنے لائق ہے, اتنا ہم ڈیٹیل میں اس میں نہیں جائیں گے, لیکن ایک دو میں باتیں بتانا چاہوں گا جو ہمارے گاؤڑی ویشنووں کے لیے امپورٹنٹ ہے. اور بتاتے کہ یہ جگن ناتھ پوری دھام تو ہے, لیکن گاؤڑی ویشنو جو ہے ان کے لیے کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ چیتنیہ مہاپربھو نے اپنے جیون کے سنیاس کال کے سب سے زیادہ ورس 18 ورس وہ جگن ناتھ پوری میں رہے تھے, اور 24 ورس کے سنیاس میں 18 ورس کیول جگن ناتھ پوری میں رہے تھے, اور اپنی ساری کی ساری لیلائیں انہوں نے جگن ناتھ پوری میں کی ہے. تو اس کے لیے گاؤڑی ویشنو جو ہے, جنہوں نے بھی مطلب جو پربھوپاد جی کو فالو کرتے ہیں اور اسکون سے جڑے ہوئے ہیں یا گوڑیا مٹ سے جڑے ہوئے ہیں, ان کے لیے یہ ستھان بہت ہی امپورٹنٹ ہے, بہت ہی امپورٹنٹ ہے. تو اس مندر کے پاس میں ایک اور مندر ہے جس کا نام ہے گنڈیچا مندر. تو گنڈیچا مندر وہ ستھان ہے جہاں پر جگن ناتھ جی کو لایا جاتا ہے رتھ یاترا کے بعد. تو جگن ناتھ جی وہاں پر رہ کے تھوڑے دن وشرام کرتے ہیں, ان کی پوجا ارچنا ہوتی ہے, اور واپس سے الٹا رتھ کے ٹائم پہ وہ چلے جاتے ہیں. تو یہ گنڈیچا مندر راجا اندردیومن کی جو پتنی تھی ان کے نام کے پیچھے رکھا گیا ہے. اور ہم نے لاسٹ ٹائم بینک آف بڑوڑا بلڈنگ میں گنڈیچا مارجن کے بارے میں تھوڑا بتایا تھا, سمے ملے گا تو تھوڑا یہاں بتانے کی کوشش کریں گے. دوسرا ایک اور مندر ہے وہاں پہ جس کا نام ہے الالا ناتھ. تو الالا ناتھ وہ مندر ہے جہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جب جگنناتھ پوری میں کئی اتسو ہوتے ہیں. سر جگنناتھ جب رتھ یاترا پہ جاتے ہیں اس کے پہلے ایک بہت ہی اچھا اتسو ہوتا ہے, اس کا نام ہوتا ہے سنان یاترا. تو سنان یاترا میں کیا ہوتا ہے کہ جگنناتھ جی کو بہت ہی گھڑوں سے پانی ڈال کر نہلایا جاتا ہے. تو اتنے سارے پانی ان پہ ڈالا جاتا ہے کہ بھگوان کو سردی لگ جاتی ہے. تو سردی لگنے کی وجہ سے وہ 10-15 دن کسی کو دکھائی نہیں دیتے ہیں, وہ سیکلوژن میں چلے جاتے ہیں, ایکانت میں چلے جاتے ہیں. اور وہاں پر لکشمی دیوی جو ان کی پتنی ہے وہ ان کی سیوا کرتی ہے, اور بھگوان جگنناتھ جی کو ایک وشیش روپ کا کاڑھا پلایا جاتا ہے, اور اس کاڑھا پلانے کی وجہ سے بھگوان کی سردی ٹھیک ہوتی ہے, اور پھر وہ جا کے رتھ پہ بیٹھتے ہیں. تو یہ جو ٹائم ہوتا ہے اس میں بھگوان کا درشن سب کو الاؤڈ نہیں ہوتا ہے. تو اس ٹائم پہ چیتنیہ مہاپربھو جب تھے وہ کیا کرتے تھے, تو الال ناتھ مندر میں چلے جاتے تھے اور الال ناتھ کے درشن کرتے تھے. اور وہاں پر ایک بہت ہی بڑی شیلا ہے پتھر, اس پتھر پہ چیتنیہ مہاپربھو مطلب ایسا بیٹھتے تھے. تو کیونکہ اتنا ویرہ تھا ان کے من میں, تو چیتنیہ مہاپربھو کے اس ویرہ بھاؤ سے وہ جو پتھر تھا وہ پگھلنے لگا. تو آج بھی جگنناتھ پوری کے اندر ہم نے خود نے درشن کیے ہیں, وہ پتھر ہے جہاں پر چیتنیہ مہاپربھو کا سر, ان کے کندھے اور ان کے پیر کے نشان ہیں ابھی بھی. تو بہت ہی سندر ستھان ہے. پھر ایک اور جگہ ہے جگنناتھ پوری میں جس کا نام ہے گمبھیرا. گمبھیرا وہ ستھان ہے جہاں پر چیتنیہ مہاپربھو رہا کرتے تھے. کاشی مشرا جی کا گھر تھا اور یہاں پر ہی چیتنیہ مہاپربھو رہتے تھے اور اپنی لیلا کرتے تھے. پھر اور آگے ایک جیسے بتایا کہ ہریداس ٹھاکر جو ہمارے نام آچاریہ ہے, ان کی بھجن کٹیر تھی وہاں پہ جس کو سدھ بکول بولتے ہیں. تو ایک وکش ہے جس کے نیچے بیٹھ کر وہ 300,000 مالا کیا کرتے تھے, اور ہریداس ٹھاکر جی کی سمادھی بھی سمندر کی طرف ہے. پھر وہاں پر ایک اور مندر ہے توتا مندر, توتا گوپیناتھ مندر. توتا گوپیناتھ مندر میں ایسا بتاتے ہیں کہ جب چیتنیہ مہاپربھو اپنی لیلا کا جب انت کیا اس یگ کے اندر اس دھرتی پہ, تو وہ توتا گوپیناتھ کے مندر میں گئے اور ان کے مندر میں جا کے انتردھیان ہو گئے. تو وہاں پر گداधर پنڈت جو تھے وہ توتا گوپیناتھ کی جو مورتی ہے ان کی پوجا ارچنا کیا کرتے تھے. اور جگنناتھ مندر کے پاس ہی ایک نرسمہ مندر بھی ہے جو نرسمہ ڈیٹی 1 کروڑ سال پہلے وہاں پہ استھاپت کی تھی وہاں پر. اور ایک پرمانند پوری کنواں بھی ہے جس کنویں کا پانی کھارا تھا, لیکن چیتنیہ مہاپربھو نے گنگا کو وہاں پر بلایا اور اس کنویں میں گنگا پرویشٹ ہوئی اور اس پرمانند پوری جو کنواں ہے اس کا پانی میٹھا ہو گیا اور اس سے سب بھکت لوگ پانی پیتے تھے. اور وہاں پر ساروبھوم بھٹاچاریہ جو تھے ان کا بھی گھر ہے. اور بہت ہی امپورٹنٹ ہمارے لیے کہ وہاں پر بھکتی سدھانت سرسوتی ٹھاکر جو ہے ان کا وہ جنم ستھان بھی ہے جہاں پر پربھوپاد جی کے جو گرو تھے انہوں نے وہ جنم لیا تھا. تو اتنی ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ جو جگنناتھ جی کا جو یہ روپ ہے یہ کس طرح آیا, تو اس کے لیے 2-3 کتھائیں ہیں. پہلا تو یہ کہ ایک بار جب بھگوان کرشن دوارکا میں تھے, تو دوارکا میں جب وہ 16,108 پتنیوں کے ساتھ رہتے تھے, 16,108 ان کے بھون تھے, ان کے محل تھے, تو کئی بار رات کو اٹھ جاتے تھے اور اٹھ کے رادھے رادھے گوپی گوپی اس طرح سے چلاتے تھے. اور رانیوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ بھگوان ایسا کیوں کرتے ہیں, کیونکہ بھگوان تب ایسا بتاتے ہیں کہ 100 برس کے اوپر آیو کے تھے, اور جب انہوں نے ورنداون چھوڑا تو وہ 9 برس کے تھے. تو اتنے برس کے بعد بھی ان کا پریم جو تھا ورنداون کے پرتی وہ گیا نہیں تھا. تو سب رانی لوگ یہ راج جاننا چاہتی تھی. تو بتاتے کہ اس سمے دوارکا میں کیول 3 لوگ تھے جو ورنداون لیلا اپنے آنکھوں سے دیکھے تھے. کون کون تھے وہ؟ ایک سوئم کرشن تھے, ایک بلرام جی تھے اور ایک روہیڑی ماتا تھی. یہ 3 جن تھے. تو بتاتے کہ رانی لوگ بلرام جی سے پوچھ نہیں سکتے کیونکہ وہ ان کے جیٹھ کے سمان تھے, ان کے بڑے بھائی تھے ان کے پتی کے. تو انہوں نے روہیڑی ماتا سے کئی بار کہا کہ ماتا ہم کو ورنداون کے بارے میں بتاؤ. تو روہیڑی ماتا نے کہا کہ نہیں, ورنداون کے بارے میں اگر میں بتاؤں گی تو کرشن بلرام آ جائیں گے اور جیسے ورنداون کا نام سنیں گے بھاگ جائیں گے ورنداون, تو تم لوگ اٹک جاؤ گی, تو میں ایسا رسک نہیں لے سکتی. تو کئی سال تک ان کو کہتے رہے. پر ایک بار روہیڑی ماتا نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بتاتی ہوں, لیکن کرشن بلرام کو روکے گا کون؟ تو جو سبھدرا تھی بھگوان کی چھوٹی بہن, تو کئی بار ایسا ہوتا نا ہم نے بھی دیکھا ہے کہ جو چھوٹی بہن ہوتی ہے وہ دھاک جماتی ہے بھائی پہ. تو اس نے کہا کہ ہم روکیں گے بھگوان کو اندر آنے سے, دوار پہ کھڑے رہ کے آپ اندر کتھا بتاؤ. تو کیا ہوا کہ روہیڑی ماتا سب رانیوں کو اندر کتھا بتا رہی تھی اور سبھدرا وہیں دروازے پہ کھڑی تھی. تو جیسے ہی ورنداون کے بارے میں کہنا شروع کیا, کیا ہوا؟ کرشن بلرام آ گئے. ایسا بتاتے ہیں پربھوپاد جی کہ جب کبھی بھی ورنداون کے بارے میں چرچا ہوتی ہے تو کرشن بلرام وہاں پہنچ جاتے ہیں. تو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ ہم لوگ اگر کبھی ورنداون کے بارے میں بات کرتے تو سمجھنا چاہیے کہ کرشن بلرام ہے, ہمارے ساتھ آ کے بیٹھے ہیں, ہمیں دکھائی نہیں دیں گے. تو جب کرشن بلرام آئے تو سبھدرا نے ان کو دروازے پہ روک لیا. پر ہوا کیا, کیونکہ جو کتھا اتنی مدھر تھی, اتنی اچھی تھی, میٹھی تھی, سن رہے تھے, تو وہ کتھا کرشن بلرام نے اور سبھدرا میاں نے بھی سنی. تو سنتے سنتے ان کو کیا ہوا کہ ان کی جو آنکھیں تھیں وہ بڑی 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 ہو گئی, اور ان کا منہ جو تھا وہ ایک دم بڑا ہو گیا, اور ان کے منہ پہ بہت ہی سندر مسکراہٹ آ گئی. اب جیسا فوٹو میں دیکھیں گے جگنناتھ جی مسکرا رہے ہیں, وہ مسکراہٹ اتنی اچھی ان کے چہرے پہ آ گئی. ویسے ہی بلدیو جی کے ساتھ بھی ہوا کہ ان کی آنکھیں بڑی بڑی ہو گئی, ان کا جو شریر تھا نا وہ گھٹنے لگا, وہ اندر چلا گیا, اور نا ان کا جو منہ تھا وہ بڑا بڑا ہونے لگا. اسی طرح سبھدرا میاں کا جو تھا شریر وہ اندر سنکوچت ہونے لگا. تو ایسا جب ہو رہا تھا, یہ جو بھاو دکھ رہا تھا, تو اچانک نارد منی وہاں پہ پہنچ گئے, اور نارد منی نے ان کا یہ سوروپ دیکھا تو ایک دم چکت رہ گئے. انہوں نے پرنام کیا, پر جیسے ہی نارد منی آگ کو آتا ہوا دیکھ کر وہ لوگ اپنے آپ واپس اوریجنل روپ میں آ گئے. تو نارد منی چلانے لگے, بولے نہیں میں نے دیکھ لیا, میں نے دیکھ لیا, میں نے دیکھ لیا. بولے ہے پربھو, میں نے آپ کا یہ سوروپ دیکھ لیا, یہ کیا ادبھت سوروپ تھا آپ کا. تو بولے کہ آپ یہ سارا وشو کو یہ سوروپ کیوں نہیں دکھاتے, کیوں اس کو ونچت رکھتے ہو. تو کرشنا نے کہا کہ میں کلیوگ میں جگنناتھ جی کے روپ میں آؤں گا, تو جب جگنناتھ کے روپ میں آؤں گا تو یہ جو تم نے میرا جو یہ روپ دیکھا ہے وہ روپ کے سب کو درشن ہوں گے. تو یہ جگنناتھ جی کا یہ جو روپ ہے یہ اس کتھا سے آتا ہے کہ کرشنا بلرام اور سبھدرا میاں کے کس طرح سے ہاتھ پاؤں اندر چلے گئے تھے شریر کے, منہ بڑا ہو گیا تھا, بڑی بڑی مسکراہٹ آ گئی تھی چہرے پہ, اور آنکھیں بڑی بڑی ہو گئی تھی. تو یہ کتھا ہے. اور دوسرا کتھا ایک اور آتی ہے کہ جو جگنناتھ جی جو مندر میں جو وراجمان ہے ان کی مورتی کیسے آئی. تو ایک بہت بڑے بہت ہزاروں ہزاروں ورس پہلے ایک راجا ہوئے تھے, ان کا نام تھا راجا اندردیمن. تو راجا اندردیمن جو تھے وہ وشنو کے مہان بھکت تھے, اور ان کی ایک ایسی اچھا تھی کہ میں بھگوان کو فیس ٹو فیس آمنے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں, ان کے چہرے کے سامنے. تو ایسی اچھا ان کے من میں تھی. تو ایک بار کیا ہوا, ایک یاتری آیا ان کے محل میں جو بھگوان کا بہت ہی بڑا بھکت تھا, اور وہ آ کے ان کو بھگوان شری نیل مادھو کے بارے میں بتانے لگا, اور کہنے لگا کہ میں نے وشنو کا آمنے سامنے درشن کیا ہے, اور وہ وشنو نیلاچل پروت پہ نیل مادھو کے روپ میں رہتے ہیں. تو راجا کو بڑی اچھا ہوئی بھگوان کا درشن کرنے کی. تو بھگوان کا درشن کرنے کے لیے اس نے کیا کہ اپنے سینکوں کو بھیجا, بولا ڈھونڈ نکالو کدھر ہے نیل مادھو اور میرے کو آ کے بتاؤ. تو سارے کے سارے سینک لوگ ہر دشا کے اندر چلے گئے ڈھونڈنے کے لیے بھگوان کو, لیکن کسی کو بھی سفلتا نہیں ملی. کیول ایک ویکتی تھا جس کا نام تھا ودیاپتی. وہ ودیاپتی گھومتے 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 ایک ایسی جگہ پہ آیا جہاں پر شبروں کا راج تھا. شبر کیا ہوتے ہیں کہ جو سور چراتے ہیں ان کو شبر بولتے ہیں. تو ان کے وہاں پہ آیا تو جو شبروں کا جو راجا تھا وہ ان کے گھر میں گیا. تو اس سمے وہ شبروں کا راجا تھا, اس کا نام تھا وشو وسو. تو وشو وسو گھر پہ نہیں تھے, ان کی جو پتری تھی للیتا وہ گھر پہ تھی. تو وہ وہاں پر گیا, پھر بعد میں وشو وسو جب آئے اور ان کو پتا چلا کہ براہمن دیوتا ہمارے گھر پہ آئے ہیں, تو انہوں نے اپنے پتری کو کہا کہ اس براہمن کی بہت اچھی طرح سے سیوا کرو اور ان کو جو کچھ بھی چاہیے آپ دو. تو اس طرح سے وہ وہاں پر رہ کے ان کا آتھتیہ سویکار کر رہے تھے. اور دھیرے دھیرے بعد میں وشو وسو کے کہنے پر انہوں نے ان کی پتری للیتا سے وواہ کیا. تو ودیاپتی جب وہاں پر رہتے تھے تو انہوں نے ایک چیز دیکھی کہ ان کے جو سسر جی تھے وہ راجا وشو وسو, وہ روز صبح کہیں چلے جاتے تھے, اور بعد میں جب واپس آتے تھے دوپہر کو تو ان کے شریر میں سے بہت ہی اچھی اچھی سگندھ آتی تھی. تو انہوں نے سوچا کہ یہ سگندھ کوئی پرفیوم بنا نہیں سکتا. وہ جو سگندھ تھی وہ رساسی پرفیوم بھی نہیں بنا سکتا. تو ہمارے پاس ایسا بتاتے, ایک بار گریراج مہاراج ایک ڈیووٹی ان کے ساتھ بیٹھا تھا جوہو میں. تو پہلی بار جب بمبئی میں بارش ہوئی, تو بارش ہوتی ہے تو ہم نے دیکھا رہے گا کہ بارش ہونے کی پہلی جو بارش ہوتی ہے جب مٹی پہ جب وہ بوندے گرتی ہے پانی کی تو اس سے ایک بہت ہی اچھی خوشبو آتی ہے. تو گریراج مہاراج نے ایسا خوشبو لے کے کہا کہ سونگھ رہے ہو یہ خوشبو؟ تو انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا کہ دنیا کی کوئی فیکٹری ایسا پرفیوم نہیں بنا سکتی جس میں سے ایسی سگندھ آ گئی. تو اس کے شریر میں سے بہت ہی اچھی سگندھ آ رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ سگندھ کا راج کیا ہے وہ پتا لگانا چاہا. تو انہوں نے للیتا سے پوچھا ان کی وائف سے کہ بھائی یہ کیا ہے, کدھر جاتے ہیں؟ تو للیتا نے کہا نہیں نہیں انہوں نے بتانے کے لیے منع کیا ہے. تو انہوں نے کہا رہے میں تو تمہارا پتی ہوں, میرے کو تو بتاؤ. تو ایسا کرنے کے بعد پھر للیتا نے اس کو بتا دیا کہ میرے پتا جی جو ہے وہ بھگوان نیل مادھو کی سیوا کرنے جاتے ہیں. اور جیسے انہوں نے بھگوان نیل مادھو کا نام سنا وہ ان کی خوشی کا ٹھکانا نہیں رہا. انہوں نے کہا رہے یہی تو میں ڈھونڈ رہا تھا, और फिर उन्होंने ललिता को कहा कि तुम्हारे पिताजी को बोलो कि मेरे को नील माधव के पास लेके जाए। तो उन्होंने कहा नहीं, इवन मैं भी नहीं गई हूँ और पिताजी किसी को नहीं लेके जाते नील माधव के पास, तो आपको भी नहीं लेके जाएंगे। तो कई बार उन्होंने बार 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 प्रार्थना की कि नहीं मेरे को नील माधव के पास एक बार तो लेके जाओ, एक बार तो लेके जाओ। तो ललिता के कहने के बार बार कहने के बाद उसके पिताजी ने कहा कि ठीक है यार चलो एक बार लेके जाता हूँ। और उन्होंने कहा कि एक शर्त है, मैं तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांध के लेके जाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, उनकी आंखों पे पट्टी बांधी और उसको लेके गए। लेकिन विद्यापति थे, वो बहुत चतुर थे, उन्होंने क्या किया कि अपने हाथ में कुछ राई, मस्टर्ड सीड जो होता है ना, राई के दाने लिए और धीरे 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 ऐसे राई के दाने छोड़ते गए पूरे रास्ते भर में। तो उससे क्या होगा कि बाद में वो जो राई के दाने गिरे उससे राई का क्या होगा, पौधा उग जाएगा, उसका पेड़ उगेगा। तो चले गए। तो जैसे वो राजा नील, भगवान नील माधव के सामने गए, उन्होंने अपने आँख की पट्टी खोली तो उनका रूप देख के आश्चर्यचकित हो गए और बहुत सेवा करने लगे। तो प्रभुपाद जी बताते कि एक्चुअली ये जो नील माधव थे ये अर्च विग्रह के रूप में थे, ये एक डीटीज के रूप में थे, ये मूर्ति के रूप में थे। तो बताते कि भगवान ये मूर्ति का रूप क्यों लेते हैं, भगवान ये मूर्ति का रूप इसलिए लेते हैं ताकि हम भगवान को देख सकें, नहीं तो भगवान को देखने की जो हमारे पास चक्षु नहीं, हम लोग को विश्व रूप नहीं देख सकते भगवान का जो अर्जुन ने देखा था। तो इसके लिए इसलिए बताते हैं कि जो जो अर्च विग्रह है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार गौर गोपाल प्रभु एक क्लास में कह रहे थे कि आप इस्कॉन वाले लोग इतना खर्चा करते हो इस मूर्ति के ऊपर, इतना सारा ज्वेलरी उसको पहनाते हो, इतना कुछ करते हो, ये खर्चा क्यों करते हो। तो उन्होंने कहा कि दे कैन नॉट अंडरस्टैंड, उनको ये समझ में नहीं आएगा कि हम लोग इस अर्चा के लिए इतना खर्चा क्यों नहीं करते, क्यों करते हैं, क्योंकि वो भागवत चर्चा नहीं सुनते। तो उनको समझ ही नहीं है कि भगवान है ये ऑर्डिनरी पत्थर नहीं है, ये मूर्ति नहीं है, ये भगवान है स्वयं। चैतन्य महाप्रभु ने जो साक्षी गोपाल को देखा था तो तुरंत कहा था कि प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात व्रजेंद्र नंदन, क्या प्रतिमा नहीं हो आप, क्या हो आप, साक्षात व्रजेंद्र नंदन हो। तो उन्होंने जब भगवान का दर्शन किया तो बहुत ही भाव विभोर हो गए और प्रार्थना करने लगे। फिर वह विश्वविष्णु ने क्या किया कि जंगल में थोड़ा फूल फल और ऐसा लेके गए भगवान की पूजा करने के लिए। तो तब तक विद्यापति उधर खड़ा खड़ा उसने क्या देखा कि एक कौवा था जो डाली पे बैठा बैठा सो रहा था। तो कई बार हम लोग भागवत क्लास में सो जाते हैं तो समझना चाहिए कि ना सोना नहीं चाहिए, बट वो कौवा सो रहा था, सोते सोते गिर गया। तो जिस डाल पे बैठा था उसके नीचे नदी थी, तो उस नदी के अंदर गिर गया। तो क्या हुआ, गिरने के बाद इमिजिएटली उसने ना चतुर्भुज रूप ले लिया विष्णु की तरह और उड़ गया, गरुड़ जी उसको लेने के लिए आए। तो विद्यापति ने कहा ये तो कौवा था, ये इसको गरुड़ लेने के लिए, ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा ये कुछ बहुत अद्भुत जगह है। तो वो भी झाड़ पे चढ़ गए और जंप मारने लगे कि भाई मैं भी चतुर्भुज बन के हरि बोल, अल्टीमेटली करना क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवत धाम जाना, चलो मैं भी भगवत धाम जाता हूँ। तो जैसे ही वो गिरने लगे एक आकाशवाणी हुई, बोले कि नहीं तुम भूल गए क्या, तुमने राजा को क्या वचन दिया था, तुमने राजा को ये बोला था कि मैं ढूंढ के बताऊंगा नील माधव को, तो जाओ राजा को बताओ। तो उन्होंने कहा हाँ बरोबर है। तो वापस से जब विश्ववसु आए तो बाद में नील माधव ने कहा कि विश्ववसु आपने बहुत वर्षों तक मेरी सेवा की है और आपकी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन आप मेरे को क्या खिला रहे हो, ये कंदमूल खिला रहे हो, ये रूट मतलब जो जड़ है, पत्ता है, फल है, ऐसा ये खा खा के कोरा कोरा मेरे को मजा नहीं आ रहा है अभी, तो अभी मैं राजा इंद्रद्युम्न से राजभोग खाना चाहता हूँ। तो जब विश्ववसु ने ऐसा सोचा, उनको लगा कि हरि बोल अभी मेरा तो सेवा गया, तो उसने क्या किया कि उसको बांध दिया अपने, उसको लगा कि ये जो मेरा दामाद है बड़ा चतुर है, इसने कुछ उल्टा सीधा बोला रहेगा इसको नील माधव को और उनको प्रलोभन दिया रहेगा अच्छा अच्छा खाने का, तो इसको मैं बांध देता हूँ। तो उसको झाड़ से बांध दिया और बाद में जब ललिता को पता चला कि नहीं इसको बांध दिया है, तो उसने उसको खोला और फिर विद्यापति क्या किए सीधे भाग गए वहां से और भाग के राजा इंद्रद्युम्न के पास गए और बताया कि मैंने नील माधव का दर्शन किया और ऐसी ऐसी जगह पे है। तो राजा इंद्रद्युम्न अपनी पूरी सेना लेके चले गए नील माधव को देखने के लिए। तो क्या हुआ कि उनको पता कैसे लगा, वो तो आंख पे पट्टी बांधी थी ना, वो जो राई डाला था वो राई से उनको पता चला कि ये रास्ता है नील माधव के पास जाने का। तो गए, मगर जब नील माधव के पास पहुंचे तो पता चला कि नील माधव उधर है ही नहीं, वो अंतर ध्यान हो गए। तो राजा बड़े एकदम क्रोधित भी हो गए और आश्चर्यचकित भी रह गए। उन्होंने सोचा कि वो जो विश्ववसु था शबर का राजा, उसने भगवान को यहाँ से हटाया रहेगा। तो उन्होंने जाके उसको पकड़ के बंदी बना लिया। तो उनको एक आकाशवाणी सुनाई थी कि नहीं 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 शबर को छोड़ दो, इसने कुछ नहीं किया है, मैं अपने मन से अंतर ध्यान हुआ हूँ और मैं आऊँगा दारू ब्रह्म के रूप में, मतलब एक लकड़ी के रूप में, और आप मेरे को वहाँ पे मंदिर में स्थापना करना। तो जब राजा इंद्रद्युम्न ने ये सुना तो वो मंदिर का निर्माण करने लगे। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा एक मंदिर बनाया भगवान के लिए। और वो मंदिर बनाने के बाद बताते हैं कि वो नीलाद्री पर्वत पे उन्होंने वो बड़ा मंदिर बनाया। और मंदिर बना के बाद में इंद्रदमन ने क्या सोचा कि इस मंदिर का जो उद्घाटन है ये मैं ब्रह्मा से करवाऊंगा, तो वो सीधा सतयुग ब्रह्मा के पास चले गए। देखो इतना पावर था पहले के राजा के पास, तो ब्रह्मा जी के पास चले गए। पर प्रॉब्लम क्या है कि ब्रह्मा जी का जो दिन रात है और हमारा जो दिन रात है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क है, तो कई वर्ष बीत गए एक्चुअली वो ब्रह्मा जी के पास आए, तो कई युग चले गए और राजा भी चेंज हो गए। तो फिर ऐसा बताते हैं कुछ सूर्यदेव नाम के राजा है, फिर एक गल माधव नाम के राजा है। तो ये गल माधव नाम के जो राजा थे इन्होंने वापस से मंदिर को हटाया। एक्चुअली क्या हुआ, जब इंद्रद्युम्न चले गए तो समुन्द्र के आसपास ना, आप थोड़ा आगे आ जाइए, तो उन्होंने क्या किया कि जो पूरा मिट्टी था वो मिट्टी भगवान के मंदिर पे आके मंदिर ढक गया, तो उन्होंने वापस से मंदिर को क्लीन कराया। जब राजा इंद्रद्युम्न आए और उन्होंने कहा कि अरे ये तो मंदिर मैंने बनाया था, ये कौन सा राजा इधर आ गया गल माधव, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मंदिर तो मैंने बनाया। तो दोनों में फाइट होने लगी। तो एक कौवा था जिसका नाम था काकभूषणी, कई वर्षों से वो वहाँ पे रहता था, तो उसने ये पूरा मंदिर कैसे बना देखा था। तो उसने बताया कि नहीं, गल माधव ने मंदिर नहीं बनाया पर राजा इंद्रद्युम्न ने बनाया। तो जब ब्रह्मा जी आए तो उन्होंने गल माधव को सजा दी कि तुमने झूठ बोला, तुम जाओ जगन्नाथपुरी से बाहर चले जाओ। बाद में जब ब्रह्मा जी को कहा कि आप इस मंदिर का उद्घाटन कीजिए, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये मंदिर का उद्घाटन करना मेरी शक्ति में नहीं है, ये भगवान स्वयं उनका ही रूप है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस पर पहले एक झंडा लगा सकता हूँ। तो उन्होंने एक झंडा लगा दिया और वो मंदिर का निर्माण हुआ। बाद में कई वर्षों तक मंदिर बन गया था लेकिन उसमें मूर्ति नहीं थी क्योंकि नील माधव गायब हो गए थे। तो राजा इंद्रद्युम्न ने सोचे कि मेरा जो जीवन है बहुत पापी जीवन है, कुछ फायदा नहीं है इसका। तो उन्होंने कुशाग्रास बिछाया और बोले कि अभी मैं उपवास करके मर जाता हूँ। तो उपवास करने लगे तो रात को जगन्नाथ जी उनके सपने में आए और बोले आप डरो मत, मैं समुन्द्र के अंदर बहता हुआ दारू ब्रह्म के रूप में आऊंगा, मतलब एक लकड़ी के रूप में, आप उस लकड़ी से मेरी मूर्ति बनाना। तो जब वो दारू ब्रह्म आया तो राजा गए उसको लेने के लिए, हजारों सैनिक हाथी उसको उठा रहे तो लकड़ी हिल ही नहीं रहा है। फिर जगन्नाथ जी सपने में आए, बोले ऐसे हिलने वाला नहीं हूँ मैं, वो जो मेरा जो पुजारी था विश्ववसु सबर का राजा उसको वापस बुलाओ, वो मेरे को उठा के लेके जाएगा और एक बहुत अच्छा रथ बनाओ। तो राजा ने एक सोने का रथ बनाया और विश्ववसु आए, उन्होंने रथ के ऊपर दारू ब्रह्म को रखा और लेके गए। अब लकड़ी तो आ गई, अब मूर्ति बनाएगा कौन, मूर्ति बनाने के लिए कोई नहीं आ रहा था। तो राजा ने कई मूर्तिकार लोगों को बुलाया, तो वो आए अपना छिन्नी हथौड़ा लेके, छिन्नी हथौड़ा समझते ना आप लोग, तो आए छिन्नी हथौड़ा लेके और जैसे ही छिन्नी और हथौड़ा टच करते थे लकड़ी पे वो टूट जाता था, हथौड़ा और लकड़ी टूट जाता था और वो बना ही नहीं पाते थे। जगन्नाथ जी फिर रहे, बोले कि ऐसा नहीं होगा। तो ब्राह्मण के रूप में आए और जो विश्वकर्मा है जो भगवान के आर्किटेक्ट है वो आए बूढ़े ब्राह्मण के रूप में। उन्होंने कहा कि मेरे को 21 दिन का समय चाहिए, दरवाजा बंद कर दो, कोई मुझसे बात नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, मैं अंदर बैठा बैठा इसको मूर्ति कराऊंगा। और बहुत बूढ़े के रूप में आए थे वो, तो राजा ने सबने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं। तो उन्होंने दरवाजा वगैरह सब बंद कर दिया और धीरे 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 अंदर मूर्ति का काम चल रहा था। लेकिन क्या हुआ कि राजा को रहा नहीं जा रहा था। तो 14 दिन के बाद क्या हुआ कि उनको आवाज जो थी हथौड़े और छिन्नी की जो आवाज आती थी वो आवाज सुनाई देना बंद हो गई। तो उनको लगा कि अरे बूढ़ा व्यक्ति था, इसने 14 दिन से ना पानी पिया है ना खाना खाया है ना पता नहीं क्या है, अंदर जिंदा रहेगा कि नहीं। तो खोलने के लिए जा रहे थे, सब मंत्री ने कहा नहीं नहीं राजा दरवाजा मत खोलो। तो लेकिन राजा और रानी जो थी उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने दरवाजा खोल दिया। तो जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि जो बूढ़ा ब्राह्मण था अंदर जो बना रहा था मूर्ति वो गायब हो गया। और उन्होंने देखा कि तीन रूप के अंदर लकड़ी है, वो थी जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा मैया की। बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की। लेकिन राजा ने एक और चीज देखी कि जो जगन्नाथ जी का रूप था वो पूरा बना नहीं था, वो अधूरा था, उनकी जो उंगलियां नहीं थी, उनका अंगूठा नहीं था, कुछ नहीं था, हाथ पैर बराबर से नहीं थे। तो उनको बड़ा दुख हुआ और उन्होंने लगा कि हे मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया और इस पाप की वजह से अभी मेरे को मरना ही चाहिए, बस दूसरा कोई उपाय नहीं है। फिर वो उपवास करके मरने के लिए लग गए। तो वापिस जगन्नाथ जी उनके सपने में आए। देखो मतलब कई बार डायरेक्ट भगवान का और उसके भक्त का बात हो रहा है, ये भी बहुत अद्भुत लीला है भगवान की। तो बताया, बोला कि चिंता मत करो, ये मेरा ओरिजिनल रूप है, मैं ऐसा था, तो डरो मत। आप एक काम करो, अगर मेरे को चाहिए तो अच्छा सोने का हाथ पैर बना के लगा दो और हर बार तुम मेरा हाथ पैर चेंज करते रहना, लेकिन एक चीज का ध्यान रखो कि मेरे जो शरीर के अंग है वही जो ऑर्नामेंट है, मतलब जो ज्वेलरी है, जो स्वर्ण आभूषण है, उसको भी फीका कर देते हैं, तो उसकी आप चिंता मत करो, आप तैयारी करो। तो उन्होंने क्या किया कि भगवान के हाथ पैर अगर ऐसा बनाए और भगवान को स्थापित किया, उनकी पूजा की। ऐसा वेदों में बताते हैं कि भगवान जो है उनके पैर नहीं है फिर भी वो चलते हैं, हाथ नहीं है फिर भी वो कार्य करते हैं, उनकी आंखें नहीं है फिर भी वो देखते हैं, और उनके कान नहीं है फिर भी वो सुनते हैं, मतलब कान नहीं है ऐसा कहने का मतलब कि हमारे जैसे मटेरियल कान नहीं है, हम लोग को सुनने के लिए खाली कान ही चाहिए, मगर भगवान कान से देख सकते हैं, आँख से खा सकते हैं। अभी ये हमको चीज समझ में नहीं आती है, पर भगवान कुछ भी कर सकते हैं। ते अंगानि यस्य सकलेन्द्र वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान का हर एक अंग दूसरा कार्य कर सकता है, अगर हमारी आंखें चली जाए तो हमको दिखाई नहीं देगा, लेकिन भगवान कान से देख सकते हैं। अभी अब कान से कैसे देखते हैं हमको समझ में नहीं आता, लेकिन भगवान देख सकते हैं। तो ऐसे हुआ, बाद में जब ये सब बातें हुई, जब भगवान मैनिफेस्ट हो गया, तो उन्होंने किंग इंद्रद्युम्न राजा इंद्रद्युम्न ने उनसे एक वर मांगा कि भगवान आप इसी रूप में यहाँ पे हमेशा रहना, कभी जाना मत, और इतनी कृपा करो कि आपका जो मंदिर है खाली 3 घंटे बंद होना चाहिए, बाकी टाइम आप सबको दर्शन करते रहो। तो भगवान ने कहा ठीक है, तथास्तु, तुम्हारी जय हो, नो प्रॉब्लम। बाद में उन्होंने कहा, श्री जगन्नाथ जी ने कहा कि जो शबर राजा था उसके जो वंशज लोग आएंगे तो वो मेरी सेवा करेंगे, उनको दयिता कहा जाएगा, और विद्यापति की जो दो पत्नियां थी, एक ब्राह्मण थी और एक ललिता थी, तो ब्राह्मण पत्नी से जो बच्चे पैदा होंगे आगे तक वो मेरी पूजा अर्चना करेंगे, और शबर जो ललिता थी उनसे जो वंश आगे बढ़ेगा वो लोग मेरे लिए प्रसाद बनाएंगे, भोग लगाएंगे। तो ऐसा सब चल रहा था, तो उन्होंने इंद्रद्युम्न ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम तो कुछ और मांगो। तो राजा इंद्रद्युम्न ने कहा कि नहीं, एक्चुअली अभी मेरा फाइट हुआ था गल माधव के साथ, और मैं बोल रहा था मैंने मंदिर बनाया, गल माधव बोलता नहीं मैंने मंदिर बनाया, दोनों फाइट कर रहे थे। बोलते आप एक काम करो कि आज के बाद आपके मंदिर के ऊपर कोई अपना अधिकार नहीं जाता है, इसके लिए मेरे को वंशहीन कर दो। देखो कितना बड़ा चीज उन्होंने मांगा, उन्होंने कहा कि मेरा कोई बेटा ही नहीं चाहिए, तो कोई आके फाइट ही नहीं करेगा कि मैंने मंदिर बनाया ऐसा करके। तो जगन्नाथ जी बहुत इस तरह का वर मांगा तो बड़े खुश हुए, मुस्कुराए और बोले तथास्तु, तुम्हारी जय हो, तुम बहुत ही बड़े भक्त हो। तो इस तरह से करके जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा मैया जो थे उनका आविर्भाव हुआ। तो ये जो स्वरूप है ये बहुत अद्भुत है, तो हमको समझना चाहिए कि ये कोई लकड़ी का टुकड़ा या काष्ठ का टुकड़ा नहीं है, ये भगवान स्वयं है, ये परम ब्रह्म है। तो परम ब्रह्म भगवान खुद आते हैं। तो आज का जो दिन है, भगवान का जो जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा है, वो इतना शुभ, इतना इम्पोर्टेंट दिन है कि भगवान को जो रथ में लोग खींचते हैं। अभी ये जो रथ यात्रा है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब क्या उसका इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में हम थोड़ा बताने की कोशिश करेंगे। कि एक बार क्या हुआ कि जब कृष्ण वृंदावन से गए थे तो वो ये वचन दे के गए थे गोपी को, यशोदा मैया को, नंद बाबा को और उनके सखा मित्र को कि मैं वापस वृंदावन आऊंगा, लेकिन कभी कृष्ण वृंदावन नहीं आए, न उनकी लीला थी वो कभी गए नहीं। ऐसा बताते हैं कि कृष्ण वृंदावन से बाहर कभी नहीं जाते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कृष्णा नेवर स्टेप्स आउट ऑफ वृंदावन, हमेशा वृंदावन में ही रहते हैं, लेकिन अपनी लीला करने के लिए वो मथुरा चले गए, तो वापस कभी आए नहीं। फिर बाद में वो द्वारकाधीश बन गए और सब हुआ। तो एक बार जब भगवान कई वर्षों के बाद एक बार सूर्य ग्रहण जब आया था तो द्वारका से सब लोग भगवान अपना पूरा फैमिली लेके कुरुक्षेत्र में गए, और यहाँ से ये जो गोपी और वृंदावन के वासी थे ये भी कुरुक्षेत्र में गए वहाँ पर स्नान करने के लिए। तो गोपी लोगों ने जब देखा कि कृष्ण भगवान जो है वो एक बहुत बड़े राजा के रूप में, बहुत बड़ा मुकुट पहना है, बहुत बड़ा उनके आभूषण है, अस्त्र शस्त्र ये सब है, हाथी घोड़े सेना पालकी ऐसा सब है, तो उन्होंने सोचा कि नहीं मज़ा नहीं आ रहा है कुछ, ये जो कृष्ण है हम कृष्ण को वही वृंदावन का कृष्ण देखना चाहते हैं। ऐसा बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने हमको कहा है कि आराध्य भगवान व्रजे से तने तद्धाम वृंदावन। उन्होंने कहा कि हमारे आराध्य देव कौन है, व्रजेंद्र नंदन, कि नंद के जो राजा है, नंद महाराज व्रज के जो राजा, उनके जो पुत्र है भगवान श्री कृष्ण गोपाल, वह हमारे आराध्य भगवान है। हम सभी भगवान को नमस्कार करते, मतलब भगवान के जो भी रूप है, जो भी स्वरूप है, वो सभी हमारे लिए पूज्य आराध्य है, लेकिन हमारे इष्ट देव कौन है, हमारे इष्ट देव है श्याम सुंदर कृष्ण। तो बोले कि हम भगवान को उसी रूप में चाहते हैं। तो अभी भगवान तो राजा थे और वो तो साधारण प्रजा थे, तो क्या कर सकते, कुछ बोल नहीं सकते थे। तो उन्होंने क्या किया कि अपने हृदय के अंदर एक बहुत अच्छा रथ बनाया, और उस हृदय के अंदर रथ बनाकर उन्होंने उस रथ पे भगवान कृष्ण को विराजमान किया, उनको बैठाया और उनको खींचने लगे। उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, कुरुक्षेत्र से आप वृंदावन में चलो, हमको आपको वही रूप में देखना है, और आपके हाथ में तलवार और मुकुट उकुट अच्छा नहीं लगता है, कि आपका मोर पंख और मुरली चाहिए हमको देखने के लिए। तो ऐसा वो लोग प्रार्थना कर रही थी। तो जो रथ यात्रा है, ऐसा बताते हैं कि जो सुंदराचल नीलाचल जो मंदिर है भगवान का, जगन्नाथ जी का, वहां से गुंडीचा मंदिर की ओर भगवान को खींचा जाता है। तो गुंडीचा मंदिर जो है वो वृंदावन की तरह है, اور نیلاچل جو ہے وہ دوارکا کی طرح ہے, تو وہاں پر سے ہم بھگوان کو رتھ پہ بیٹھ کے کھینچ کے ہم اس کو کہتے ہیں کہ چلو ورنداون میں چلو. تو یہ بھگوان کا رتھ یاترا کا ایک سگنیفیکینس ہے. تو رتھ یاترا میں کیا ہوتا ہے کہ بھگوان آتے ہیں رتھ پر بیٹھتے ہیں, اور وہاں پہ ایک بہت بڑا روڈ ہے جگنناتھ پوری میں, اس کو گرانڈ روڈ بولتے ہیں, بہت بڑا گرانڈ روڈ ہے وہ. تو اس روڈ کے اوپر بھگوان کا رتھ کھینچتے ہیں, اور ایسا بتاتے ہیں کہ بھگوان کا جو رتھ ہے وہ بہت ہی بڑا ہے, اس کے اندر کوئی الیکٹریسٹی کچھ بھی لگا ہوا نہیں ہے, 36 پہیے ہوتے ہیں اس کے اندر بھگوان جگنناتھ کے رتھ میں, پھر میرے خیال سے مے بی کچھ 26 پہیے ہوتے ہیں بلدیو جی کے رتھ میں, اور پتہ نہیں 20 یا 14 کچھ پہیے ہوتے ہیں, میرے کو برابر سے دھیان میں نہیں ہے, سبھدرا میاں کے رتھ میں. تو تینوں الگ الگ رتھ پہ بیٹھ کے اور بھگوان کو کھینچا جاتا ہے, اور لاکھوں لوگ آتے ہیں, کم سے کم 8 سے 10 لوگ آتے ہیں, لاکھ لوگ آتے ہیں بھگوان کا رتھ کھینچنے کے لیے, اور رتھ کو کھینچ کے اور ان کو لے کے جایا جاتا ہے. پر چیتنیہ مہاپربھو نے ایک اور شکشا ہم کو دی کہ جب بھگوان جگنناتھ کے مندر میں سے بھگوان کو گنڈیچا مندر میں لے جایا جاتا ہے تو کیول 7 دن کے لیے بھگوان اس گنڈیچا مندر میں رہتے ہیں, اور باقی کے ٹائم گنڈیچا مندر پورا خالی ہوتا ہے. تو اس گنڈیچا مندر کے اندر بہت سارا کچرا اور یہ سب جمع ہو جاتا ہے, تو اس کو صاف کرنے کے لیے, تو چیتنیہ مہاپربھو نے بتایا کہ جب بھگوان کو مندر میں بٹھانا ہے, مطلب ہمارے ہردے میں بٹھانا ہے, تو مندر کو صاف کرنا چاہیے, گندی جگہ میں نہیں بٹھا سکتا. جیسے ہم جگنناتھ جی کو یہاں پہ لا کے بٹھایا نا, تو صاف جگہ پہ بٹھایا اس کو, تو اسی طرح چیتنیہ مہاپربھو نے کہا کہ ہمارا ہردے جو ہے اس کے اندر بھگوان کو لانا ہے, تو ہمارا ہردے بھی صاف کرنا چاہیے. اور انہوں نے گنڈیچا مندر میں مارجن میں انہوں نے کچھ شکشا دی تھی, اور ہمارے پاس بہت زیادہ سمے نہیں ہے, لیکن ایک دم شارٹ کٹ میں بتانے کا کوشش کریں گے, کیونکہ آپ میں سے خالی 2-4 لوگ ہی بینک آف بڑودا میں تھے, باقی لوگ نہیں تھے. تو گنڈیچا مندر کو چیتنیہ مہاپربھو نے صاف کرنے کے لیے کہا, تو انہوں نے کیا کیا کہ مندر کا جو سپرنٹینڈنٹ تھا اس کے پاس گئے اور کہا کہ میرے کو یہ مندر صاف کرنا ہے. اور کرشن داس کویراج گوسوامی بتاتے ہیں کہ چیتنیہ مہاپربھو نتیہ لیلا کرتے تھے جگنناتھ پوری کے اندر, اور اس طرح لیلا کرتے کرتے ایک دن جگنناتھ رتھ یاترا کا دن آ گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ اے مت نانا رنگے دن کال گیلا جگنناتھ رتھ یاترا نکٹ آئیلا, کہ جگنناتھ رتھ یاترا نکٹ آ گئی. تو انہوں نے جا کے سپرنٹینڈنٹ سے پرارتھنا کی, اور انہوں نے کہا کہ میرے کو یہ مندر صاف کرنا ہے, ذرا صاف کرنے کے لیے دیجیے. تو بتاتے ہیں کہ تین جن پاشے پربھو ہسیا کہیلا گنڈیچا مندر مارجن سیوا مانگی نیلا, کہ انہوں نے گنڈیچا مندر کو صاف کرنے کی سیوا مانگی. تو سپرنٹینڈنٹ نے کہا کہ آپ سوئم بھگوان ہیں, آپ کو شوبھا نہیں دیتا کہ آپ مندر کو صاف کرو, لیکن پھر بھی آپ کی جو اچھا ہے آپ کریے, میں آپ کو 100 جھاڑو اور 100 مٹکے لا کے دوں گا صاف کرنے کے لیے, اور آپ صاف کیجیے. پھر بعد میں کیا کیا چیتنیہ مہاپربھو نے کہ دوسرے دن اپنے سارے گنوں کو لے کے وہ چلے گئے کہاں پر, صاف صفائی کرنے کے لیے. دیکھو بھگوان جو خود ہے وہ خود صاف صفائی کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو بتاتے آر دینے پرواتے لن نج گانا شری ہست سوارے انگے لے پیلا چندانا, کہ بھگوان سوئم اپنے ہاتھوں سے سب لوگوں کے سر پہ چندن لگایا. جیسے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم جنماشٹمی اور گور پورنیما کے پہلے ہم بھی کچھ یو نو مارجن کرتے ہیں مندر کا اور اس کا اس کا بینک آف بڑودا میں بھی, تو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ یہ چھوٹا موٹا کاریہ نہیں ہے, بہت مہان کاریہ بھگوان کے لیے ہم کر رہے ہیں. اور بتاتے ہیں کہ چیتنیہ مہاپربھو نے اپنے ہاتھ سے سب لوگوں کو ایک ایک جھاڑو اور ایک ایک مٹکا دیا. کرشن داس کویراج گوسوامی کہتے ہیں کہ شری ہستے دیلا سوارے ایک ایک مارجنی سب گن لنا پربھو چلی نا اپنی, کہ وہ چلے کہاں پر, صاف صفائی کرنے کے لیے, کہ سوچو بھگوان سوئم نا صاف کر رہے ہیں. تو اس طرح کرتے کرتے انہوں نے گئے اور پورا مندر کو دھو ڈالا. بہت ہم نے لاسٹ ٹائم بہت ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ کس طرح سے انہوں نے چھت کو دھویا, پھر جھاڑو نکالا کیا وہ کیا اور کر کرا کے اور شروعات ہوئی. اور چیتنیہ مہاپربھو نے سب جو کچرا تھا اپنے خود کے کپڑے میں لے کے باہر ڈالا, دوسرے لوگوں نے بھی ایسے ہی کیا اپنے کپڑے میں لے کے باہر ڈالا. پھر چیتنیہ مہاپربھو نے کہا کہ ابھی دوسری بار ہم لوگ واپس سے مندر کو صاف کریں گے, دوسری بار مندر صاف کیا. پھر چیتنیہ مہاپربھو نے دیکھا کہ چلو کس نے کتنا زیادہ کچرا نکالا ہے بتاؤ میرے کو, تو سب نے اپنے اپنے کچرے کا پہاڑ بنا دیا, ٹیلا بنا دیا. تو بتاتے ہیں کہ چیتنیہ مہاپربھو کا جو پہاڑ تھا کچرے کا جو بنایا ہوا ٹیلا, وہ دوسروں سب لوگوں کا مل کے بھی جو تھا اس سے بڑا تھا. تو چیتنیہ مہاپربھو اتنا ایسا کر رہے تھے, ایسا 100 ہاتھ تھے ان کے, اتنا فٹافٹ کام کر رہے تھے. اور جب وہ ہو گیا بعد میں چیتنیہ مہاپربھو نے کہا کہ ابھی چلو پانی سے دھو اس کو, تو سب لوگ کھڑے تھے مٹکا لے کے ریڈی کہ چلو جیسے بھگوان بولیں گے ہم پانی سے دھونا چالو کریں گے. سو بتاتے ہیں کہ سب لوگ نے دھنادھن دھنادھن ندی سے جل بھرنا شروع کیا, تو اتنے لوگ آ گئے ندی میں کہ جگہ ہی نہیں بچی ندی میں کھڑا رہنے کے لیے, تو کوئی کنویں میں سے جا کے پانی نکالنے لگا. تو بتاتے ہیں کہ جل بھرے گھر دھوئے کرے ہری دھوانی कृष्ण हरि ध्वनि बिना आर नहीं सुनी। और जब वो साफ सफाई कर रहे थे तो प्रजल्प नहीं कर रहे थे, फालतू बात नहीं कर रहे थे, किसी की निंदा नहीं कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल कृष्णा कृष्णा इस तरह से। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत ही अच्छी सुंदर भाषा में ये बताते हैं कि किसी को अगर कोई चीज चाहिए थी तो बोलता कृष्णा कृष्णा, जैसे मैं कह रहा समझो मैं करताल मांगता हूँ बोलूंगा कृष्णा कृष्णा तो वो करताल देगा कृष्णा कृष्णा करते। तो घड़ा मांग रहे थे तो बोले कृष्ण कृष्ण कही करे घटे रे प्रार्थना, कृष्ण कृष्ण कही करे घट समर्पण। तो इस तरह से देखो सब लोग काम कर रहे थे और चैतन्य महाप्रभु जा जाके देख रहे थे कौन किस तरह से काम कर रहा है, और जो अच्छा काम कर रहा था उसको शाबाशी दे रहे थे, बोलते वाह बहुत अच्छा काम किया दूसरे को भी सिखाओ, और जो खराब काम कर रहा था उसको बोलते ऐसा काम नहीं करते इससे सीखो। तो इस तरह से जाके चैतन्य महाप्रभु सबको सिखा रहे थे और इस तरह कर कर करा के उन्होंने पूरा मंदिर धो दिया। तो प्रभुपाद जी और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनको बताते कि ये जो गुंडीचा मन जो जो मंदिर का मार्जन किया वो हमारे मन का मार्जन कर रहे हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना चेतो दर्पण मार्जनम, कि हमारे मन के अंदर भी काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर इत्यादि कई कचरे भरे हुए हैं। तो जब तक ये कचरे बाहर नहीं निकलेंगे हम लोग भगवान को अपने हृदय में बिठा नहीं सकेंगे। तो इसके लिए कई बार हमको ऐसा लगता है कि हम लोग यू नो सत्संग में आ गए तो हम लोग बहुत अच्छे बन गए, लेकिन दूसरे क्षण गुस्सा आ जाता है बहुत जबरदस्त ना, फिर कुछ गाली बकने लगते हैं कुछ करने लगते हैं। तो बताते हैं कि बहुत टाइम लगेगा, धीरे 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 होगा। तो हमारे जो मन जो ये मन मंदिर बोलते हैं ना हम लोग, कि हमारे मन के अंदर जितना कचरा भरा हुआ है जब तक वो कचरा बाहर नहीं निकलेगा तब तक भगवान हमारे हृदय में आएंगे बैठेंगे नहीं। एक्चुअली भगवान हमारे हृदय में है, और गिरिराज महाराज बताते हैं कि वो भगवान खुद एक्चुअली साफ करना चाहते हैं, पर आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। और भगवान का ये जो मंदिर है जो हमारा मन है उसका कचरा कैसे साफ होगा, हरि नाम लेके
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
सो अभी हम टाइम हो गया पूरा, कितना टाइम है हमारे पास, 10 मिनट हो गया। सो एक्चुअली क्या होता है कि हाँ, सो ये जो रथ यात्रा है, ये जो रथ यात्रा जो शुरू हुई, बताते हैं कि जो जगन्नाथ जी का जो मूर्ति है ये इतना पावरफुल है कि उसको हर कोई खींच नहीं सकता। तो कृष्णदास कविराज जी गोस्वामी बताते हैं कि विश्वंभर जगन्नाथ के, जगन्नाथ जो वो है वो क्या है, वो पूरे विश्व के स्वामी है। विश्वंभर जगन्नाथ के चलित पारे आपना इच्छा ही चले करिते विचार। बोलते कि जगन्नाथ जी का जो जब रथ चलता था, ये जगन्नाथ जी को जब वो रथ पे लेके जाते थे तो कई बार जगन्नाथ जी बीच में रुक जाते थे और आगे नहीं बढ़ते थे, तो बहुत लोग उनका धक्का मारते थे। तो कहते हैं कि ये तो भगवान है, इनको कौन धक्का मार के रथ पे लेके जा सकता है। या जब रथ चल रहा है तो कई बार रथ चलते चलते क्या होता था, बीच में रुक जाता था और बहुत लोग खींचते थे उसको, यानी एक्सेलेटर तो कुछ है नहीं कि दबाया और रथ चल लिया, लेकिन खींचते थे तो रथ आगे नहीं बढ़ता था। लेकिन जब भगवान की इच्छा होती थी, जब चैतन्य महाप्रभु अपने कभी बार सर से टच करते थे रथ को तो आगे चलता था। तो कहते हैं कि क्षण स्थिर हन रहे, कभी कभी वो रथ रुक जाता था, तनी लेह ना चले बोलते कभी चलता नहीं था, ईश्वर इच्छाएं चले ना चले करो बोले, बोलते कितना बल लगाओगे तो भी भगवान का रथ आगे नहीं बढ़ेगा। क्षण स्थिर हन रहे तनी लेह ना चले, ईश्वर इच्छाएं चले ना चले कर बोले। तो भगवान को हम अपने बल से खींच नहीं सकते हैं, भगवान को केवल प्रेम से खींचा जा सकता है। तो ये जो रथ है, ये जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा चलती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जो थे, इन्होंने ये रथ यात्रा शुरू की थी। तो आज इस पूरे विश्व के अंदर आप देखो तो कितनी जगह रथ यात्रा हो रही है, अमेरिका में होती है, रशिया में होती है, चाइना में होती है, यूएई में होती है, आज हमारे यूएई के अंदर 2 जगह पर रथ यात्रा है। तो इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में इधर उधर ने कहाँ कहाँ जहाँ पे भगवान का नाम भी लोगों को सुनाई नहीं दे रहा था ये रथ यात्रा शुरू हुई। तो ये रथ यात्रा जो थी ये प्रभुपाद जी का कृपा है। एक बार क्या हुआ कि मालती माता जी को एक गुड़िया मिली एक स्टोर में से, तो वो लेके आई और जैसे ही प्रभुपाद जी ने देखा उन्होंने प्रणाम किया, बोला रहे ये तो जगन्नाथ है तो इनके साथ बलदेव और सुभद्रा भी होंगे, जहाँ उनको भी लेके आओ। तो लेके आए, फिर उन्होंने श्याम सुंदर प्रभु को कहा और जयानंद प्रभु को कि भगवान की मूर्ति बनाओ रथ बनाओ। तो मूर्ति बना के ना ट्रक में, पहला जो रथ हमारा चला था वो ट्रक था, जिसका उनका वो ट्रक के अंदर मूर्ति को बिठा के और जगन्नाथ रथ यात्रा की थी। तो ये जगन्नाथ जी को प्रभुपाद जी ने पूरा वर्ल्ड के अंदर फेमस किया, और अभी ऐसी हालत है कि सैन फ्रांसिस्को में जब रथ यात्रा निकलती है तो अमेरिका के अंदर वो छुट्टी का दिन होता है, पब्लिक हॉलीडे होता है, कि जहाँ पर उनको गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है आप रथ यात्रा कर सकते हो, और लाखों लोग वहाँ पर अटेंड करते हैं। उसी तरह दुनिया के कोने 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 के अंदर ना प्रभुपाद जी ने क्या किया कि भगवान जगन्नाथ जी को बहुत फेमस कर दिया, और जगन्नाथ ने क्या किया प्रभुपाद को फेमस कर दिया। तो आप देखो कि आप हम यहाँ पे अरब देश के अंदर बैठ के जो ये कथा कर रहे हैं ये भी सिर्फ एक व्यक्ति की कृपा से ही है, शिला प्रभुपाद। कि अगर प्रभुपाद नहीं होते तो ये कृपा हमको नहीं मिलती। ये कौन हमको ये सब बताता कि जगन्नाथ कौन है, रथ यात्रा क्या है, वेद शास्त्र क्या है, भागवतम क्या है, चैतन्य चरितामृत क्या है, भगवद गीता क्या है। तो ये सिर्फ प्रभुपाद जी की असीम कृपा है, और प्रभुपाद जी के जो अनुयायी है उनके जो शिष्य है जयपताका स्वामी महाराज, महाविष्णु को स्वामी महाराज और अन्य महाराज जो यहाँ पे आते हैं, उन्होंने अपने इतने सारे शिष्य को किया। जैसे लास्ट ईयर जब दुबई में रथ यात्रा हुई थी तो 1500 लोगों ने अटेंड किया था। आप सोचो इतना बड़ा संख्या में, और भगवान की दया से पहली बार अबूधाबी में रथ यात्रा हुई थी 6 तारीख को हमने की थी, तो वहाँ पर भी 300-400 लोग आए थे। तभी हम ये प्रार्थना करेंगे कि हर साल हम अबूधाबी में भी रथ यात्रा करते रहें। तो ये जो फेस्टिवल है, ये उत्सव है, और ये बहुत ही महान उत्सव है, और हमको प्रार्थना करनी चाहिए जगन्नाथ जी से कि किस तरह से हम जगन्नाथ जी को प्रसन्न कर सके, और उनको प्रसन्न करके किस तरह से हम जो हरिनाम है उसमें हमारी श्रद्धा और स्थापित कर सके और भगवान का नाम लेंगे। तो अल्टीमेटली ऐसा बताते कि हमको जाना है गोलोक धाम और टिकट है हरिनाम। तो अगर हरिनाम का टिकट खरीदेंगे तो हम जा सकते हैं, और केवल भगवान का नाम लेके ही हम भगवान को पा सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की
जय,
श्रील प्रभुपाद की
जय,
गुरुदेव की
जय,
ताई गौर प्रेमानंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी को कुछ अगर प्रश्न है या कुछ टीका है तो आप क्विकली पूछ सकते हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा समय तो नहीं है, लेकिन अगर किसी को कोई इम्पोर्टेंट प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। कोई बात नहीं, अभी समय का अभाव है तो हम लोग यहीं पे कथा को विराम देंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी नम्रता से, इतने पेशेंस से सुना। तो ये कथा बताने में अगर कुछ त्रुटि हो गई रहेगी तो कृपया मेरे को माफ़ करना, क्योंकि मेरे को इतना अच्छा ज्ञान नहीं है, पर एक सेवा थी तो मैंने कहा चलो ठीक है, जितना भी हम कर सकते हैं आपके लिए सेवा करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।